તારીખ 14/9/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 710 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 712
રાજચંદ્ર વચનામૃત 8710 पत्र में आत्मा के विषय में और आत्मकार्य के विषय में बहुत सी सिद्धांतिक बात का प्रतिपादन किया है। ओम आत्मा सच्चिदानंद ऐसा लिखा है। आत्मा मैंने मैं आत्मा कोई थर्ड पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, आत्मा मैंने फर्स्ट पर्सन मैं आत्मा सच्चिदानंद मैंने सत मैंने शाश्वत रहने वाला, कभी मेरा नाश नहीं होता है ऐसा। चित मैंने ज्ञान स्वरूप और आनंद मैंने आनंद स्वरूप। मैं शाश्वत ज्ञान और आनंद स्वरूप हूँ ऐसा मूल जो आत्मा का स्वरूप है उसकी भावना यहाँ पर भाई है। भावना, विचार और ध्यान परिणाम के जो अलग अलग प्रकार है उसमें विचार तो सबों को होता है, भावना कुछ एक को होती है, और जिसको भावना होती है उसको ध्यान होता है। ध्यान से एकाग्रता होती है, भावना में रस आता है, रुचि बढ़ती है और फिर एकाग्रता का अवसर आता है। विचार भी भावना के साथ होवे वो जरूरी है, वो आवश्यक है। ज्ञान अपेक्षा से सर्वव्यापक सच्चिदानंद ऐसा मैं आत्मा एक हूँ ऐसा विचारना और ऐसा ध्यान करना। ज्ञान अपेक्षा से सर्वव्यापक, ज्ञान अपेक्षा से सर्वव्यापक मैंने क्षेत्र अपेक्षा से सर्वव्यापक नहीं, भाव अपेक्षा से भी सर्वव्यापक नहीं, द्रव्य अपेक्षा से भी सर्वव्यापक नहीं, काल माने पर्याय अपेक्षा से भी सर्वव्यापक नहीं। ये सब बातें इसमें आ जाती है। आत्मा को सर्वव्यापक ऐसा विशेषण दिया जाता है, इसका मतलब क्या कि वो बात मर्यादित है, सिर्फ ज्ञान अपेक्षा से है। ज्ञान सर्व जगह सर्व क्षेत्र में सर्व पदार्थ में ज्ञान जैसे चला जाता है ऐसा ज्ञान में सर्व पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। सर्व को जानने वाला ज्ञान इतना स्पष्ट जानता है, उतना स्पष्ट जानता है कि जैसे वहां पहुंच करके जानता हो, ऐसा दिखाने के लिए ऐसा समझाने के लिए सर्वव्यापक बोला गया है। फिर भी ज्ञान गुण और ज्ञान के पर्याय आत्मा का क्षेत्र को छोड़ करके कहीं भी जाती नहीं, जाता नहीं और व्याप्य व्यापकता करता भी नहीं। वो बात जो लोग नहीं समझे उन्होंने परमात्मा सर्वव्यापक है ऐसा ले लिया। घास चास नहीं पास अपन विश्वपति नो वास, बदे परमात्मा परमात्मा परमात्मा, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान अपेक्षा से वो मर्यादित बात है।
क्यों?
कि केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि अन्य पदार्थ का भी अनंत गुण धर्म को जान लेता है अपने में रह के, फिर भी उतना स्पष्ट जानता है कि जैसे उसमें प्रवेश होकर जान लेने और जाना जाए उतना स्पष्ट जान लेते हैं, उतनी प्रत्यक्षता दिखाने के लिए, निर्मलता स्वच्छता और स्पष्टता दिखाने के लिए व्यापक ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। वास्तव में ज्ञान वहां जाता नहीं, अपने आप में रह करके जान लेता है, और इसका अनुभव यहाँ भी हो सकता है। जैसे हम कोई पर्वत की चोटी पर हैं और हमको अगल बगल के 25 माइल के एरिया में जो बात है वो दिखने में आती है, और दूरबीन से बाइनोकुलर लेकर देखें तो बहुत दूर दूर का एरिया और स्पष्ट दिखाई देता है, दूर के गांव वगैरह सब। अब अनुभव देखो कि ज्ञान वहां गया या इधर ही रहा है, कि ज्ञान इधर हुआ है इधर रहा है, फिर भी इसकी उतनी चमत्कारिक शक्ति है कि वहां गए बिना जान लेता है, जैसे वहां जाके जाना हो ऐसा ऐसा जान लिया है, उसलिए बोला कि व्यापक है, बाकी जाता नहीं। ये सच्चिदानंद शब्द है वो अन्य मत में भी प्रसिद्ध है, वेदांत में खास करके अधिक प्रसिद्ध है ये। इसलिए सर्वव्यापकता वहां ली गई है, आत्मा की क्षेत्र अपेक्षा से भी ली गई है, और एक परम ब्रह्म सारा विश्व में व्याप्त व्यापक रूप है ऐसा वहां एक कॉन्सेप्ट भी है। और जैन दर्शन में भी आत्मा एक है, एक हूं ऐसा लिया ना, मैं एक हूं ऐसा कॉन्सेप्ट, दोनों में अंतर है। एक मैंने मेरे में कोई दूसरा नहीं है, वो बात है, लेकिन मैं एक हूं, मैंने विश्व में पूरा विश्व में मैं एक हूं ऐसी बात नहीं है। सभी आत्माएं भिन्न भिन्न है, सभी परमाणु भी भिन्न भिन्न है, जगत में पदार्थ अनेक है, लेकिन मैं एक हूं। एक हूं मतलब मेरे एकता में खंडित पना होकर के दो दो एक का दो कभी नहीं होता, मैं एक में से दो नहीं होता कभी। शरीर का संयोग होता है जिसको जन्म कहते हैं, वो अकेला जन्मता है, सुख दुख भोगता है अकेला भोगता है। शरीर का वियोग जिसको बोलता है मृत्यु, उसमें भी एक है। चारों गति में अकेला ही घूमता है, मोक्ष में जाएगा तो भी अकेला जाएगा, इसलिए मैं एक हूं ऐसी बात है। वो संख्या से है, मेरी संख्या है वो एक है, और ज्ञान अपेक्षा से सर्वव्यापक की शक्ति है, केवल ज्ञान है, वो शक्ति की व्यक्ति सर्वव्यापक रूप हो गई, फिर भी वो सबको जानता है उतनी सी बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। सच्चिदानंद ऐसा मैं आत्मा एक हूं, सत मैंने शाश्वत रहने वाला ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप ऐसा मैं एक आत्मा हूं, ऐसा आत्मा का विचार करना, विचार में मैंने ऐसे आत्मा का विचार करना, विचार में अकेला कोरा विचार जैसे कोई अन्य पदार्थ का विचार करते हैं ऐसा विचार नहीं करना। मैं हूँ इसमें भावना आती है, ऐसा आत्मा मैं हूँ ऐसा विचारना, तो उसमें बात वो है कि कोई दूसरा पदार्थ का विचार हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को शामिल करना, इन्वॉल्व कर देना, और वो बिना भावना नहीं होता। इसलिए भावना के साथ विचार करना। भावना क्या चीज है कि जैसे कहते हैं हमको ये भाव अच्छा लगता है, भावना जो चीज भाती है उसी फीलिंग को भावना, उसकी फीलिंग को भावना कहते हैं। तो मैं हूँ वो बात में अपने आप को शामिल करने की भावना है विचार के साथ, और उस भावना पूर्वक, उस भावना के विचार पूर्वक ध्यान होता है। इस तरह से ध्यान माने एकाग्र होना, अन्य चिंता से मुक्त होकर के अपने आत्मा में एकाग्र होना, उसी को कहते हैं आत्मध्यान। ऐसा ध्यान करना, निर्मल, अत्यंत निर्मल, परम शुद्ध, चैतन्य घन, प्रकट आत्म स्वरूप है। मेरा स्वरूप मूल में कैसा है? अवस्था में बहुत गड़बड़ी है, संसार में बहुत मलिनता है, निर्मलता नहीं है, लेकिन मूल स्वरूप में ऐसा नहीं है। जैसे खान में, खानी में सोना के रजकण के साथ, सोना के पार्टिकल के साथ मिट्टी के रजकण भी साथ में है, वो मैला सोना है। अगर कोई सोना में चांदी तांबा मिलाता है तो भी वो शुद्ध सोना नहीं है। बोला जाता है कि ये शुद्ध सोना नहीं है, परंतु वास्तव में जो सोना है वो तो शुद्ध ही है। जैसे अपने अलंकार बनाते ऑर्नामेंट, उसमें कुछ मिलाना पड़ता है चांदी तांबा, तो बोलते हैं कि कितना कैरेट है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, या 12 वाला, 14 वाला, 15 वाला, कुछ न कुछ मिलावट है, लेकिन जितना है उतना शुद्ध है। जैसे हम बेचने को जाएं, बोले भाई इतना तो उसमें दूसरा मिला हुआ है, तो पैसा देगा वो शुद्ध सोने का देगा, तो मतलब क्या हुआ कि जितना है उतना शुद्ध है, और उसको शुद्ध किया जा सकता है। ऐसे आत्मा, आत्मा के मूल स्वरूप में शुद्ध है, निर्मल, निर्मल, अत्यंत निर्मल मैंने पूरा निर्मल, परम शुद्ध मैंने पूरा शुद्ध, चैतन्य घन, चैतन्य घन प्रकट आत्मस्वरूप है। किसमें प्रकट है? हमारे ज्ञान में प्रकट है। ज्ञान में जो विषय होता है वो प्रकट है, वो छिपा हुआ नहीं रहता, ऐसा कहना है। प्रकट मैंने अवस्था में ऐसा हो वो बात नहीं है। अवस्था में संसार अवस्था है और अवस्था में मलिनता है। जैसे सोना शुद्ध किया जाता है वैसे आत्मा की मलिनता दूर करके अवस्था में भी वो शुद्ध हो सकता है। वो शुद्ध आत्मा को हो, मुक्त आत्मा को हो, एक ही बात है। लेकिन वो कब होता है शुद्ध? कि जब शुद्धता को भाने में आती है, ध्यान, ध्यान करने में आती है, तब शुद्ध होता है। यही शुद्ध होने का प्रोसेस है, दूसरा कोई शुद्ध होने का प्रोसेस नहीं है। इसका यही कारण है कि आत्मा एक ऐसा पदार्थ है कि जिस जिस पदार्थ का वो अवलंबन लेता है अवस्था वैसी हो जाती है। जैसे जैसे प्रसंग का अवलंबन लेता है वैसा वैसा उन तन्मय हो करके वैसी अवस्था धारण कर लेता है। जैसे अभी कोई दुख का प्रसंग नहीं हो फिर भी भूतकाल में कोई दुख की बात बनी हो और उसमें तन्मय होकर के कोई स्मरण करता है तो अभी उसका दुख चालू हो जाता है। ऐसा सुख का होता है। बात क्या हुई सिद्धांतिक तौर से कि जैसा अवलंबन लेता है वैसा अवस्था में बन जाता है। ऐसा अवस्था धर्म है। जब ऐसा अवस्था धर्म है तो आप अपने मूल शुद्ध स्वरूप का अवलंबन लेकर के अवस्था में ऐसा हो जाओ, इस धर्म का सदुपयोग है। जैसा अवलंबन लो वैसा होना, ऐसा अवस्था धर्म है तो अपना शुद्ध परम तत्व का, परमात्म तत्व का अवलंबन ले लो, वैसा हो जाओगे आप। हाँ वो तो है, अवलंबन तो महिमा के बिना आएगा नहीं और महिमा पहचान के बिना आएगी नहीं और पहचान परिचय के बिना होगी नहीं। फिर तो वही क्रम है जिसका जो प्रोसेस है वही है। यहाँ तो उतनी बात है कि ऐसा क्यों लिखा इधर कि मैं आत्मा निर्मल अत्यंत निर्मल परम शुद्ध चैतन्य घन प्रगट आत्मस्वरूप हूँ, कि मैं अपने आप को ऐसा अवलंबन में प्रगट रूप से दे लेता हूँ, शक्ति रूप है उनको जैसे वो व्यक्त है ऐसा ही अवलंबन में लेता हूँ। और एक बात दृष्टांत का ले लें कि जैसे कि हमको बोला गया कि इधर बम रखा गया है तो बम फूटा तो नहीं, बम में जो घातक शक्ति है वो अप्रगट होने पर भी उसको प्रगट रूप में हमने मान ली, स्वीकार कर ली और हमको भय हुआ कि नहीं हुआ, हम भागे कि नहीं भागे वहां से। जब पता चला कि यहाँ बम रखा गया है तो हम कोई खड़े रहेंगे क्या, वहां से जल्दी भाग जाएंगे। कहीं भी हो, कोई भी बिल्डिंग में बम रखा है मालूम पड़ा वहां से लोग भाग जाएंगे। कोई वहां तर्क वितर्क नहीं करता कि बम फूटा नहीं तो हम कैसे भागे, फूटने के बाद तो भागने का मौका है ही नहीं। बिना फूटे फूटा हुआ ही देखने में आता है। इस तरह से शक्ति का व्यक्ति के रूप में स्वीकार हो सकता है। दृष्टांत में क्या बात है कि उसमें जो फूटने की शक्ति है और उससे जो विनाश होता है वो तो होगा तब होगा, लेकिन इसका विश्वास, इसकी प्रतीति, इसकी मौजूदगी का अनुभव करके भय उत्पन्न होता है और लोग भाग जाते हैं। वैसे आत्मा शक्ति रूप है, उसकी प्रतीति वैसी करनी है तो बहुत जैसे बम तो इतना ही है लेकिन विनाश की बड़ा करता है कि सारे बिल्डिंग को खत्म करता है। ऐसे आत्मा में शक्ति बहुत है, कितनी शक्ति है जितनी शक्ति है उतना विश्वास में, उतना ज्ञान में, उसका प्रतीत में लेने हमें आए हैं, तो उसकी महिमा आती है और उसका ध्यान लगता है और वैसी अवस्था, उसका अवलंबन आता है ध्यान में, और जैसा अवलंबन होता है वैसी अवस्था हो जाती है। तो कहते हैं कि आत्मा निर्मल है, अत्यंत निर्मल है, परिपूर्ण शुद्ध है और चैतन्य घन है, यानी चैतन्य, चैतन्यता भी अनंत है उसमें, घन मैंने सॉलिड, और ऐसा प्रकट रूप में अपने को देखो। कैसा देखो? जैसा प्रकट हो वैसा ही देखो अप्रगट रूप, प्रकट अप्रगट होते हुए भी। क्यों? कि इस शक्ति में व्यक्त होने का स्वभाव है, वो भी स्वभाव है, वो भी शक्ति है, शक्ति में व्यक्त होने का स्वभाव है। तो उस स्वभाव से उसको देखो और मैं हूं ऐसा अवलंबन ले लो, अवस्था वैसे हो जाएगी। वही एकमात्र इसके शुद्ध होने की प्रक्रिया है। अब कहते हैं कि आत्मा को ग्रहण करे कैसे, कि सबको बाद करते हुए अबाध्य, बाध करते हुए अबाध्य अनुभव जो रहता है वह आत्मा है। सबको बात करना मैंने क्या है कि हमने मेरा पना बहुत जगह कर लिया है, लेकिन सब हमारे साथ रहते नहीं है। जितने भी संयोग है इसका वियोग अवश्यम भावी है, है और है। दूसरी बात को तो छोड़ो, शरीर जो है जिसने हम अपना रूप मानते हैं, अपना स्वरूप मानते हैं, उसका भी संयोग हमेशा हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए उसको भी बात करो। क्यों? वो भी छूट जाता है, बात रही दूसरे दूसरे भावों की तो वो भी छूट जाता है, राग हुआ छूट गया, द्वेष हुआ छूट गया, वो जो छूट गया वो मूल स्वरूप नहीं है। आत्मा शाश्वत है, उसका मूल स्वरूप में से कोई बात छूटती नहीं, और छूटती है वो मूल स्वरूप में नहीं है। तो बात क्या रहती है? अनुभव, ज्ञान में जो अनुभव करने का बात है, अनुभव करने का जो भाव है, वो अनुभव हमेशा हमेशा वो क्या ही करता है, अनुभव नहीं मिटता। किस किस का अनुभव करता है वो बात करने की बात है। कॉमन फैक्टर लेना है, अबाध्य अनुभव, अनुभव में अनुभव चला नहीं जाता कभी। देख लो कि आपका अनुभव कभी चला गया, अब बिना अनुभव कभी रह गए क्या? हैं? हाँ, वो विदन स्वभावी क्यों? अनुभूति स्वरूप कहो, वो आत्मा का मूल स्वरूप है। कहते हैं कि यहाँ से पहचानो, अबाध्य अनुभव रहता है वह आत्मा है, वहाँ से आत्मा को पहचानो कि अनुभूति स्वरूप हूँ, वही मैं हूँ। और वो भी अनुभव सबों को पकड़ने में नहीं आता है, तो और बताते हैं कि जो सबको जानता है वह आत्मा है, जो सबको जानता है वह आत्मा है। एक आत्मा क्या करता है कि जानता है, और ज्ञान को आप नहीं मिटा सकते। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञान का भी नाश नहीं है, इसलिए आत्मा का नाश नहीं है तो ज्ञान का नाश भी नहीं है। और वो अपन प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं कि ज्ञान को हम मिटा नहीं सकते, एक सेकंड के लिए भी ज्ञान को बंद नहीं कर सकते। वो सतत जानना 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 वो कार्य चालू रहता है। इसलिए जो सबको जानता है वह आत्मा है, और जो सर्वभाव को प्रकाशता है वह आत्मा है। दूसरे भावों को और दूसरे पदार्थ को, भाव में दोनों लेना, भावों को और पदार्थ को प्रकाशता है। प्रकाशता है मतलब जिसके प्रकाश में ये है ऐसा मालूम पड़ता है। ज्ञान प्रकाश में सर्व भाव सर्व पदार्थ मालूम पड़ता है, इसलिए वो आत्मा प्रकाशक है और सब पदार्थ उसका प्रकाश्य है। तो जो प्रकाशता है वही आत्मा है। उपयोगमय आत्मा है, सब ज्ञान की बात लिया है, आत्मा की बात लिया है, अनुभव से भी जानने से भी, और उपयोगमय आत्मा है। उपयोग माने ज्ञान का व्यापार, ज्ञान और दर्शन वो दोनों चैतन्य के अंश है, और उसके परिणमन को उसके व्यापार को उपयोग कहने में आता है। ज्ञान और दर्शन के व्यवसाय को उपयोग कहते हैं। उपयोग कहने का तात्पर्य वो है उसमें कि ज्ञान है वो कहीं न कहीं सावधान होता है, उपयोग में सावधानी है। आत्मभावना में एक ऐसी बात है कि मैं मेरे स्वरूप में उपयोग करता हूँ, मतलब मैं मेरे स्वरूप में सावधान हूँ कि मैं आत्मा हूँ, और वो सावधानी कहीं न कहीं होती ही है। जैसे हमारी सावधानी आत्मा में नहीं है संसार में, तो हमारी सावधानी संयोग में है। शरीर में सावधानी है, और दूसरे भी हमारे जितने भी संयोग है उसमें भी हमारी सावधानी है। हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं हो, बाधा नहीं पहुँचे, हमारे मकान को बाधा नहीं पहुँचे, हमारे पैसे को बाधा नहीं पहुँचे, हमारी इज्जत को बाधा नहीं पहुँचे, हमारे परिवार को कुछ नहीं हो जाए। जितने भी संयोग है उसमें हमारी सावधानी है। अब देखो उनकी संख्या कितनी। शरीर में सावधानी है, शरीर के परमाणु कितने, अनंत। और चीजें में सावधानी कितने, कितने पदार्थ है वो, अनंत। वो सावधानी में आकुलता हुई कि नहीं हुई, हुई। कितनी हुई, आई कि नहीं आई गिनती, हाँ। अनंत पदार्थ की सावधानी अनंती हुई कि नहीं हुई, आकुलता अनंती हुई कि नहीं हुई, हाँ, होता ही है। जीव अज्ञान अवस्था में पर में सावधान है, और ज्ञान अवस्था में स्व में सावधान है। दोनों में कोई सावधान हो ही नहीं सकते, एक में ही सावधान हो सकता है, या तो स्व में या तो पर में। पर अनंत पदार्थ है, हमको शरीर का एक बाल भी सफेद होना नहीं चाहिए, फिर हमारी बाजी हाथ की नहीं है, तो अलग बात है। लेकिन हमारी सावधानी तो उतनी है कि नहीं है, है? ऐसे पर में सावधान होने वाला स्वरूप में बेसावधान है, और जो ज्ञानी स्वरूप में सावधान है वो पर में सावधान नहीं है। तो ये उपयोगमय होना, उपयोग करना, वो आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा का स्वरूप है। वो कहीं न कहीं सावधान होगा होगा और होगा, उसका उपयोग कहीं न कहीं होगा होगा और होगा ही। अव्याबाध समाधि स्वरूप आत्मा है। समाधि मैंने आत्म शांति, जिसकी आत्म शांति को कोई बाध नहीं कर सके, ऐसा मैं आत्मा हूं। मेरी आत्म शांति को अमुक प्रकार की प्रतिकूलता उत्पन्न होने से मेरी आत्म शांति बिगड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है, छूट जाती है, टूट जाती है, वो बात गलत है। हमारी आत्म शांति को तोड़ने के लिए, या उसके तो किसी की पहुंच है ही नहीं। जो भी अशांति होती है वो भी हमारी भूल से, हमारी गलतफहमी से, हमारे मिसकॉन्सेप्ट से और हमारी भ्रांति से ही होती है। बाकी आत्मा की शांति को कोई डिस्टर्ब कर सके ऐसी परिस्थिति है नहीं, क्योंकि किसी की पहुंच नहीं है। हमारे स्वरूप में किसी की पहुंच है ही नहीं, कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते। भय से अशांति होती है ना, तो अनुभव की बात है सब। भाई से अशांति होती है। अब भाई किस बात का है, देखो कि आत्मा का नाश होता है, मृत्यु होती है, कि आत्मा का छेदन भेदन होता है, टुकड़ा होता है, कि आत्मा को कोई जला सकता है, कोई सूख सकता है, आत्मा को क्या कर सकता है कोई। ऑपरेशन होता है शरीर का, तो शरीर का अवयव कटता है, आत्मा का कोई अंग नहीं कटता। ये हीरालाल जी का हाथ कटा हुआ दिखता है, पूछो इनको कि आपका आपकी आत्मा कट गई क्या, आपको ऐसा अनुभव हुआ। हमने उसी वक्त पूछा था, जिस वक्त हाथ कटा उस वक्त हम वही प्रश्न करते थे कि आपको अनुभव क्या होता है वो बताइए, कि मेरे में से कुछ कट गया, हाथ नहीं दिखता है, वो जरूर बात है। पहले उतना था, अभी उतना रह गया, हाथ कटा वो बात जरूर है, उसमें कोई बेमत दो मत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको अनुभव क्या होता है, मेरा कुछ कट गया, मेरे आत्मा में से कुछ कट गया, ऐसा कोई अनुभव तक नहीं, अभी भी नहीं होता है। उस वक्त नहीं हुआ, अभी भी नहीं होता है। अभी भी उंगली इधर है, वो उंगली इधर है, अंगूठा इधर है, वो सब अभी मालूम पड़ता है। कोई अंग आत्मा में से नहीं गया, शरीर का अंग चला गया, आत्मा में से नहीं गया, जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता, वो अकाट्य चीज है। ऐसे ही आत्म शांति भी, जिसको ये मालूम पड़ता है, अनुभव होता है कि मैं एक अखंड पदार्थ हूं, मेरा खंडितपना तो होता नहीं, मृत्यु होने का तो सवाल नहीं। जिसको मृत्यु का भय नहीं, उसको और कौन सा भय हो सकता है, उसको तो दूसरा भय हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही होता है। ओ भाई, जिसको छूट गया उसको सब कुछ निर्भय रूप से ही अनुभव में आता है। इसलिए ज्ञानी सर्वथा निर्भय है और निर्भय होने से बिल्कुल दुखी नहीं है, ऐसा अनुभव खुद करते हैं ऐसे, और उसमें शांति है। दुख का अभाव में शांति है, दुख का अभाव में ही शांति है। तो कैसी है मेरी शांति कि अब यह बात है, कोई बाधा नहीं पहुंच सकता, ऐसा मैं आत्मा हूं। विश्वास अनुभव से आ सकता है और जिसको ये अनुभव हुआ उसको तो आगे बढ़ने का बहुत चांस है। जैसे उनको खुद को हाथ कट गया फिर भी अनुभव होता है कि मेरा टुकड़ा नहीं होता है, तो अभी अबाधित्व का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, अवलंबन लेने से दशा होती है। शरीर का अवलंबन लिया तो दुख हो जाएगा, अरे मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ कट गया, दुखी हो जाएगा। और मेरा आत्मा में कुछ नहीं कटा, मैं उतना ही उतना हूँ, जितना जितना हूँ उतना ही हूँ, कुछ कमी का अनुभव हो ही नहीं रहा है, बस वो अशांति नहीं होगी। शांति तो जितना अवलंबन आएगा उतनी होगी, वो अवलंबन देने का ये मौका है। देखो आत्मा अव्याबाध है, ये प्रसंग से भी अनुभव गोचर होता है कि नहीं होता है, तो हो सकता है, ऐसे शांति की बात है। शक्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मा में शांति अव्याबाध है उतना ही नहीं, बेहद शांति है। कितनी है? बेहद शांति। तो कहते हैं कि ऐसा स्वरूप है, इसका विश्वास करो और विश्वास करके उसका अवलंबन लेकर के अनुभव करो। अब कहते हैं कि आत्मा है, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आत्मा है कि नहीं है। शरीर है वो समझाने की जरूर नहीं, लेकिन शरीर का नाश होने से मेरी मृत्यु हो जाती है ऐसा भ्रांतिगत अनुभव होता है। वास्तव में कोई आत्मा मरती नहीं है, लेकिन अब भी तो है। आज का साइंस भी वो बोलता है कि जो पदार्थ है उसका सर्वनाश नहीं हो सकता, एक परमाणु का भी सर्वनाश नहीं हो सकता। अवस्था से अवस्थांतर होते हैं सब, मूल चीज का कोई नाश हो और कोई नई चीज पैदा हो विश्व में, चेतन और अचेतन कुछ नहीं बनता। अवस्था से अवस्थांतर, सारा जगत परिवर्तनशील है और प्रति समय प्रति सेकंड सबका परिवर्तन चालू ही है। वो पदार्थ का स्वभाव है, परिणमनशीलता वो पदार्थ का स्वभाव है। तो यहाँ तो वो बात है कि आत्मा है, परिवर्तन करता है वो बात अभी बात नहीं है। आत्मा है कि नहीं है? कि है तो है, प्रकट है या अप्रकट है, कैसा है तो कि प्रकट है, दिखाई नहीं देता तो बम दिखाई दिया कि नहीं दिया, ऐसे देखो। अब हमें कैसे दिखाई दिया? आप किसी को पूछो कि आपने बम को फूटते हुए दिखा है, और फूटा हुआ बम सर्व का विनाश करता है, वो देखा है कि नहीं देखा? क्यों? कि हमारे देखने के लिए जा ही नहीं सकते, देखने वाला रह नहीं सकता, फिर भी हमको स्वीकार आता है कि नहीं आता है? ए प्रकट होते हुए भी प्रकट रूप में स्वीकार आता है तब हम भागते हैं। अगर हमको ऐसा स्वीकार है कि वो तो अभी भय प्रकट नहीं है तो हम क्यों भागेंगे? लेकिन वो बात वहां नहीं रहते, वहां कोई तर्क भी नहीं लड़ाता। लड़ाता है तर्क? इधर 10 तर्क करेगा आत्मा के विषय में, 100 तर्क करेगा, ऐसा है, वैसा है, कैसा है, कैसे माने, मान ही नहीं सकते। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारा शक्ति का स्वरूप, शक्ति रूप स्वरूप, शक्ति रूप में प्रकट है, शक्ति रूप शक्ति के रूप में तो प्रकट ही है, देखने की नजर चाहिए। क्या है? देखने की नजर चाहिए। हाँ, शक्ति के रूप में शक्ति प्रकट ही है। ज्ञानी कहते हैं कि हम हमारे आत्मा को प्रकट रूप देखते हैं, क्योंकि जैसा है वैसा हमको देखने में आता है, उसमें प्रकट अप्रकट की अपेक्षा भी लागू नहीं पड़ती। मूल में तो ऐसी बात है, जैसा है वैसा है, और खुलाई है, निरावरण है, वो ऐसा बोला जाता है, लेकिन आवरण निरावरण अवस्था में होता है, वस्तु को तो वो चीज लागू ही नहीं होती। ऐसा अत्यंत प्रकट है, प्रकट है उतना ही नहीं, आत्मा अत्यंत प्रकट है। कहां से देखा जाए? क्योंकि स्वसंवेदन प्रकट अनुभव में है, वो वेदन से उसकी मौजूदगी, वेदन से स्वसंवेदन से इसकी मौजूदगी स्वीकृत हो जाती है, उसको ग्रहण किया ऐसा बोलने में आता है, अस्तित्व ग्रहण स्वीकार होता है, प्रतीत आती है कि मैं अत्यंत प्रकट हूँ, स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से मैं प्रकट हूँ। क्यों? कि ये इसका एक अंश है, स्वसंवेदन है, वही आत्मा है, वही अनुभूति है, और वही अनुभूति स्वरूप आत्मा है। यहाँ से आत्मा का ग्रहण होता है, आत्मा का पता लगता है, आत्मा में पहुँच होती है, वही एक सबों के लिए एक खुली जगह है, ज्ञान में ज्ञान का स्वयं का स्वसंवेदन है, वो एक खुली जगह है, ऐसे आत्मग्रहण होता है। और कैसा ग्रहण होता है? कि मैं हूँ उतना ही नहीं, मैं अत्यंत प्रकट हूँ, ऐसा ग्रहण होता है। बहुत सी बातें ऐसी, जैसे एक चिंगारी है, वो चिंगारी को व्यक्ति के रूप में देखो तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन उसको हमेशा हमेशा शक्ति के रूप में देखी गई है। रूई के गोडाउन के पास वो रखी नहीं जाती, पेट्रोल की टैंकर के पास उसको ले जा नहीं सकते, हाँ, गैस तेल मिट्टी के तेल के पास उसको रख नहीं सकते, हाँ, और दारू खाने के पास भी उसको नहीं रख सकते, फटाकड़ा होता है ना, वहां चिंगारी को नहीं ले जा सकता। क्या हो गया? तो उतनी छोटी है कि नहीं? उसकी मोटी शक्ति को देखी जाती है, छोटी अवस्था को नहीं देखी जाती। ठीक उसी तरह आप स्वसंवेदन में महान आत्मस्वरूप को देखो। क्या ज्ञान वेदन में अनंत शक्ति स्वरूप महान आत्मा को देखो। स्वसंवेदन भले ही अल्प हो वर्तमान अवस्था में, लेकिन उसको अल्पत्व के रूप में नहीं देखा जाता, उसको स्वभाव के रूप में, स्वरूप के रूप में इसलिए देखा जाता है कि वो अनंत अनादि अनंत शुद्ध एकांत शुद्ध रहता है हमेशा। वेदन में किसी की मिलावट नहीं हो सकती, वेदन में किसी की मिलावट हो ही नहीं सकती। वहाँ कोई अवकाश ही नहीं है कि कोई चीज इसमें आ सके या कोई भाव इसमें आ सके। इसलिए वो शुद्ध स्वसंवेदन है और अनादि अनंत होने से अनंत है, और उसकी अनंतता उसकी सातत्यता से ग्रहण होती है। प्रकट रूप में अल्प होने पर भी इसकी अनंतता समझी जाती है और स्वीकृत होती है। उसका स्वीकार होने से आत्मा का अस्तित्व का ग्रहण हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से मोक्ष मार्ग चालू होता है अस्तित्व ग्रहण से, और फिर मोक्ष होके रहता है, हुए बिना रहता नहीं।